एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि जबरदस्त ताकत और उतने ही गहरे सवालों से भरा हुआ है, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर।
और इस दिलचस्प सफर में हमारी गाइड होगी मैक्सवेल इरविन की किताब न्यूक्लियर पावर, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो जानी मानी सीरीज है ना, उसका हिस्सा है।
जी हाँ, और ये सीरीज जानी ही इसलिए जाती है कि मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझाती है।
बिल्कुल, और ये किताब खास इसलिए भी है क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा जैसे मतलब इतने जटिल और विवादास्पद मुद्दे पर बहुत ही संतुलित और वैज्ञानिक नजरिए से बात करती है, किसी एक तरफ झुकी हुई नहीं लगती।
सही कहा, बिना किसी पक्षपात के।
और देखिए ना, आज ये मुद्दा कितना जरूरी हो गया है। एक तरफ तो हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं जो बढ़ती जा रही हैं, और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का खतरा बड़ा संकट है।
हाँ, और परमाणु ऊर्जा को लेके तो बहस हमेशा ही तेज रहती है कि भाई ये समाधान है
या खतरा।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए एक मजबूत, साफ सुथरी बुनियाद तैयार की जाए तथ्यों के आधार पर।
बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं लेखक की, मैक्सवेल इरविन। कौन थे ये, इनकी पृष्ठभूमि क्या थी?
मैक्सवेल इरविन, जैसे आपने बताया, एक जाने माने सैद्धांतिक भौतिक ज्ञानी थे, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, प्रोफेसर रहे और बाद में एबर्डीन यूनिवर्सिटी के कुलपति भी बने। और दिलचस्प बात यह है कि उनका अकादमिक जीवन ज्यादातर मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में बीता।
मैनचेस्टर? अरे हाँ, ये तो वही जगह है जहाँ रदरफोर्ड ने, उन्होंने तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी, है ना? परमाणु विज्ञान का एक तरह से गढ़ रहा है वो। बिल्कुल सही। तो इरविन की जड़ें जो हैं वो परमाणु सिद्धांत और क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत गहरी थीं, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनका जो नज़रिया है वो किसी नेता या किसी एक्टिविस्ट का या फिर इंडस्ट्री के लॉबिस्ट का नहीं है।
अच्छा,
वो एक वैज्ञानिक की तरह बात करते हैं। उनका ध्यान बुनियादी सिद्धांतों और सबूतों पर रहता है।
यानी उनका मकसद प्रोपेगेंडा करना नहीं बल्कि हमें जानकारी देना है, सही जानकारी।
मैंने सुना है कि वो मुश्किल वैज्ञानिक बातों को भी बड़े आसान तरीके से समझा देते थे।
हाँ, उनकी यही खासियत थी, उनकी पकड़ विज्ञान पर बहुत गहरी थी और वही उनकी ताकत थी।
और यही शायद इस किताब की भी खूबी है।
बिल्कुल, ये किताब परमाणु ऊर्जा के रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश करती है। सोचिए, ये इंसान की बनाई शायद सबसे ताकतवर तकनीकों में से एक है और शायद सबसे ज्यादा विवादित भी।
तो किताब का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ ये बताती है कि न्यूक्लियर पावर काम कैसे करती है, या उससे कुछ ज्यादा है? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। किताब का मूल सवाल ये है कि भाई परमाणु ऊर्जा असल में है क्या, ये चलती कैसे है, और इसके फायदे और नुकसान के पीछे जो असली सबूतों पर आधारित तर्क हैं वो क्या हैं।
अच्छा,
ये उन बहसों से ऊपर उठने की कोशिश करती है जो अक्सर मतलब भावनाओं या आधी अधूरी जानकारी पर टिकी होती हैं।
मतलब ये हमें एक साफ वैज्ञानिक नजरिया देने की कोशिश करती है ताकि हम खुद अपनी राय बना सके, है ना?
एकदम। इरविन का तर्क किसी पक्ष के समर्थन में नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि एक बेहतर जानकारी भरी सार्वजनिक बातचीत हो। वो मानते थे कि अगर आम नागरिक परमाणु के विज्ञान को, रिएक्टर की इंजीनियरिंग को, रेडिएशन की प्रकृति को और पूरे ईंधन चक्र की पेचीदियों को समझ लें,
हाँ,
तो वो डर या अंधे भरोसे से हटकर सोच समझकर फैसला ले सकते हैं।
तो ये किताब हमें कहाँ से शुरू करके कहाँ तक ले जाती है? इसका सफर कैसा है?
सफर शुरू होता है पदार्थ के सबसे छोटे कण से, मतलब परमाणु और उसके केंद्र नाभिक से। फिर हम सीखते हैं परमाणु विखंडन यानी फिशन के बारे में, कैसे एक छोटे से कण को तोड़कर इतनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती है।
अच्छा,
इसके बाद हम परमाणु रिएक्टर की दुनिया में झांकते हैं, देखते हैं कि कैसे ये जटिल मशीनें बनी हैं, कैसे इस ताकत को काबू में रखा जाता है।
और क्या ये कहानी सिर्फ रिएक्टर पे ही खत्म हो जाती है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो बात है। ये हमें रिएक्टर के बाहर ले जाती है, पूरे परमाणु ईंधन चक्र में, मतलब यूरेनियम की खुदाई से लेकर उसके इस्तेमाल के बाद जो खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा बचता है,
हाँ, वो कचरा,
उसके प्रबंधन तक, जो हजारों सालों तक सिरदर्द बना रह सकता है। किताब रेडिएशन के असर पर बात करती है, 3 Mile Island और चेर्नोबिल जैसी दुर्घटनाओं का विश्लेषण करती है, और आखिर में भविष्य की उम्मीद, परमाणु संलयन यानी फ्यूजन पर भी नजर डालती है।
तो ये एक तरह से विज्ञान और आम इंसान के बीच पुल का काम करती है।
हाँ, बिल्कुल, यू कह सकते हैं।
इरविन बताते हैं कि हमारी दुनिया ऊर्जा की भूखी है और ये भूख बढ़ती ही जा रही है।
हाँ, और वो सीधे तौर पर हमारी जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, तेल, गैस पर जो निर्भरता है और उसके जो भयानक नतीजे हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन, उसकी तरफ इशारा करते हैं। और यहीं पर वो एक बहुत ज़रूरी आइडिया सामने लाते हैं, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी।
ऊर्जा घनत्व, हाँ ये मैंने सुना है, मतलब किसी चीज़ के थोड़े से हिस्से में कितनी ज़्यादा ऊर्जा भरी हुई है, जैसे लकड़ी से ज़्यादा कोयले में और कोयले से ज़्यादा पेट्रोल में।
बिल्कुल सही समझा आपने। और फिर आता है परमाणु ईंधन, उसका ऊर्जा घनत्व तो किसी भी रासायनिक ईंधन से हजारों बल्कि लाखों गुना ज़्यादा है। आप सोचिए, एक छोटी सी यूरेनियम की गोली में इतनी ऊर्जा होती है जितनी कई टन कोयले में।
बाप रे, इतना फर्क।
हाँ, और यही वो वजह है जो हमें परमाणु ऊर्जा जैसी जटिल और हाँ जोखिम भरी चीज पर सोचने को मजबूर करती है, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा के जो मौजूदा स्रोत हैं वो टिकाऊ नहीं हैं और हमारी जरूरतें बहुत बड़ी हैं।
तो ये इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है?
इसके लिए तो हमें परमाणु के अंदर झांकना होगा, है ना?
जी हाँ।
इरविन हमें परमाणु की बनावट समझाते हैं, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भारी नाभिक और बाहर घूमते इलेक्ट्रॉन। वो बताते हैं कि प्रोटॉन तय करते हैं कि तत्व कौन सा है और न्यूट्रॉन उसके वजन और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। यहीं पर आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आता है।
आइसोटोप मतलब एक ही तत्व के अलग अलग रूप।
हाँ, जैसे यूरेनियम के दो मुख्य आइसोटोप हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235।
दोनों में प्रोटॉन तो बराबर होते हैं 92, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं।
और ये फर्क बहुत बड़ा है शायद, क्योंकि सिर्फ यूरेनियम 235 ही आसानी से टूट सकता है, मतलब विखंडनीय या फिसाइल है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं से शुरू होती है परमाणु विखंडन यानी फिशन की कहानी। जब एक न्यूट्रॉन U235 के नाभिक से टकराता है तो वो नाभिक दो छोटे हिस्सों में टूट जाता है, और इस प्रक्रिया में आइंस्टाइन का मशहूर E=mc² काम आता है।
अच्छा, वो वाला समीकरण।
हाँ, टूटने के बाद जो चीजें बनती हैं उनका कुल वजन मूल नाभिक और टकराने वाले न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम होता है। ये जो वजन गायब हुआ वही भारी मात्रा में ऊर्जा में बदल जाता है।
और फिर शुरू होती है चेन रिएक्शन, है ना?
बिल्कुल, क्योंकि हर विखंडन में ऊर्जा के साथ साथ दो तीन नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। अगर ये न्यूट्रॉन दूसरे U235 नाभिकों से टकराएं तो वो भी टूटेंगे और फिर उनसे और न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये सिलसिला बढ़ता जाता है। यही है श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन।
यहीं पर शायद बम और रिएक्टर का फर्क आता है। एक में ये रिएक्शन बेकाबू हो जाता है और दूसरे में इसे कंट्रोल किया जाता है।
हाँ बिल्कुल, अनियंत्रित चेन रिएक्शन का मतलब है परमाणु बम। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को संभाल सकें, उसे एक स्थिर दर पर चला सकें, तो आप लगातार गर्मी पैदा कर सकते हैं और इसी गर्मी से बिजली बनाई जाती है परमाणु रिएक्टर में।
तो ये रिएक्टर काम कैसे करता है, मतलब ये इतनी खतरनाक प्रक्रिया को काबू में कैसे रखता है?
यही इंजीनियरिंग का कमाल है। देखिए, एक रिएक्टर के कुछ मुख्य हिस्से होते हैं जो मिलकर ये काम करते हैं। पहला है ईंधन, फ्यूल। आमतौर पर यूरेनियम डाइऑक्साइड की छोटी छोटी गोलियां होती हैं जिनमें U235 की मात्रा थोड़ी बढ़ाई जाती है। इसे संवर्धन या एनरिचमेंट कहते हैं।
अच्छा।
फिर होता है मंदक, मॉडरेटर, अक्सर पानी होता है ये। इसका काम है न्यूट्रॉनों को धीमा करना ताकि वो आसानी से अगले विखंडन को शुरू कर सकें।
और इसे कंट्रोल करने के लिए जैसे गाड़ी में ब्रेक होते हैं?
हाँ बिल्कुल, वो है नियंत्रण छड़े, कंट्रोल रॉड्स। ये बोरॉन या कैडमियम जैसे पदार्थ की बनी होती हैं जो न्यूट्रॉन को सोख लेती हैं। इन्हें रिएक्टर में अंदर बाहर करके रिएक्शन की रफ्तार को घटाया, बढ़ाया या फिर पूरी तरह बंद किया जा सकता है।
समझ गई। और गर्मी निकालने के लिए?
उसके लिए होता है शीतल, कूलेंट। ये भी अक्सर पानी ही होता है जो रिएक्टर में पैदा हुई भयानक गर्मी को बाहर निकालता है। इसी गर्मी से फिर भाप बनाकर टरबाइन घुमाई जाती है और बिजली बनती है।
और सुरक्षा, सुरक्षा का क्या इंतजाम होता है?
सबसे भारी कवच होता है कंटेनमेंट बिल्डिंग। ये कंक्रीट और स्टील की एक बहुत ही मजबूत मोटी दीवार होती है। इसका काम है कि अगर कोई दुर्घटना हो भी जाए तो रेडियोधर्मी पदार्थों को बाहर हवा में फैलने से रोकना।
ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन आपने कहा था कि कहानी सिर्फ रिएक्टर तक ही सीमित नहीं है, ये ईंधन चक्र क्या बला है?
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, परमाणु ऊर्जा सिर्फ रिएक्टर चलाने भर की बात नहीं है, ये एक पूरा चक्र है। मतलब यूरेनियम की खुदाई से लेकर उसके कचरे के निपटान तक, इसे क्रैडल टू ग्रेव यानी जन्म से कब्र तक का नजरिया कहते हैं।
तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी?
शुरुआत होती है फ्रंट एंड से। इसमें यूरेनियम अयस्क की खुदाई होती है, उसे साफ करके येलो केक बनाया जाता है, फिर उसे गैस में बदलते हैं, फिर उसमें U-235 की मात्रा बढ़ाई जाती है, संवर्धन, और आखिर में ईंधन की छड़ें बनाई जाती हैं।
ये संवर्धन प्रक्रिया थोड़ी संवेदनशील लगती है।
हाँ, ये है, क्योंकि यही तकनीक अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो परमाणु हथियार बनाने में भी काम आ सकती है।
अच्छा, और इस्तेमाल के बाद वो जो खतरनाक कचरा बचता है उसका क्या होता है? यही तो सबसे बड़ा सिरदर्द है ना?
बिल्कुल, ये बैक एंड ही सबसे ज्यादा विवादास्पद हिस्सा है। इस्तेमाल हो चुका ईंधन, जिसे स्पेंट फ्यूल कहते हैं, बहुत ज्यादा रेडियोधर्मी होता है। इसे पहले कई सालों तक पानी के बड़े बड़े पूल में ठंडा किया जाता है, फिर उसे सूखे कंक्रीट के मजबूत डिब्बों यानी ड्राई कास्ट में रखा जा सकता है। लेकिन ये लंबे समय का समाधान नहीं है।
तो लंबे समय के लिए क्या विकल्प है फिर? उसे हमेशा के लिए कहीं रखना होगा ना?
हाँ, दो मुख्य रास्ते सोचे गए हैं। एक है ओपन साइकिल, मतलब कचरे को जैसा है वैसा ही जमीन में बहुत गहराई में किसी भूगर्भीय रूप से स्थिर जगह पर दबा देना। इसे जियोलॉजिकल रिपोजिटरी कहते हैं। लेकिन ऐसी जगह खोजना और लोगों को इसके लिए राजी करना बहुत मुश्किल है। अमेरिका में युक्का माउंटेन प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है, जो सफल नहीं हो पाया।
और दूसरा रास्ता?
दूसरा रास्ता है क्लोज्ड साइकिल। इसमें कचरे को प्रोसेस किया जाता है, जिसे पुनर्संसाधन या रीप्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें कचरे से बचा हुआ यूरेनियम और प्लूटोनियम निकालकर दोबारा ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है।
अरे वाह, ये तो अच्छा लगता है सुनने में। कचरा भी कम हो जाता होगा।
हाँ, कचरा कम होता है और ऊर्जा भी ज्यादा मिलती है। लेकिन इसमें प्लूटोनियम अलग हो जाता है और प्लूटोनियम बॉम्ब बनाने के काम आ सकता है, तो इससे परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ जाता है और ये प्रक्रिया महंगी भी है। तो आप देखिए, दोनों रास्तों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, कोई आसान जवाब नहीं है।
और एक और बड़ा डर जुड़ा है इससे, रेडिएशन का। ये अदृश्य खतरा लोगों को बहुत डराता है। किताब इसके बारे में क्या कहती है?
इरविन इसे बहुत ही वैज्ञानिक नजरिए से समझाते हैं। वो बताते हैं कि रेडिएशन कई तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, और उनमें से कुछ, जिन्हें आयोनाइजिंग रेडिएशन या आयोनाइजिंग विकिरण कहते हैं, हमारी कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
हाँ, यही तो डर है।
लेकिन वो ये भी बताते हैं कि हम सब लगातार कम मात्रा में प्राकृतिक रेडिएशन के बीच जी रहे हैं। सूरज से आता है, जमीन से निकलता है, यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में पोटेशियम-40 से भी रेडिएशन निकलता है। इसे बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं।
अच्छा, मतलब रेडिएशन तो हमारे चारों तरफ है ही।
हाँ, कम मात्रा में। जब हम मेडिकल एक्सरे करवाते हैं या हवाई जहाज में सफर करते हैं, तब भी हमें सामान्य से ज्यादा रेडिएशन मिलता है। इरविन इस बात पर जोर देते हैं कि खुराक ही जहर बनाती है, डोज मेक्स द पॉइजन। ज्यादा रेडिएशन बेशक खतरनाक है, लेकिन कम मात्रा के असर पर वैज्ञानिक बहस अभी भी जारी है।
तो सुरक्षा नियम कैसे तय होते हैं?
सुरक्षा नियम बहुत सख्त है और वो इस सिद्धांत पर चलते हैं कि कोई भी अतिरिक्त मात्रा पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसे LNT मॉडल कहते हैं। ये एक सावधानी भरा नजरिया है।
लेकिन दुर्घटनाएं तो हुई हैं, फ्री माइल आइलैंड, चेर्नोबिल, इनका जिक्र कैसे किया है किताब में?
जो अमेरिका में 1979 में हुआ, वहां मशीन में खराबी और इंसानी गलती दोनों थी। नतीजा ये हुआ कि रिएक्टर का कोर पिघल गया, जिसे मेल्टडाउन कहते हैं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, जो कंटेनमेंट बिल्डिंग थी उसने अपना काम किया।
अच्छा, तो मतलब रेडिएशन बाहर नहीं निकला ज्यादा?
हाँ, बहुत ही कम रेडिएशन बाहर निकला। किसी की जान नहीं गई, ना ही लोगों की सेहत पर कोई खास असर पड़ा। हाँ, ये कंपनी के लिए एक आर्थिक और पब्लिक रिलेशन की तबाही जरूर थी।
और चेर्नोबिल, वो तो बहुत भयानक था।
चेर्नोबिल जो 1986 में सोवियत संघ में हुआ, वो सबसे बुरा हादसा था। वजह, एक तो रिएक्टर का डिजाइन ही खराब था, RBM के टाइप, जिसमें पश्चिमी देशों जैसी मजबूत कंटेनमेंट बिल्डिंग नहीं थी और वो डिजाइन अस्थिर भी हो सकता था। ऊपर से सुरक्षा नियमों की पूरी तरह अनदेखी करके एक खतरनाक टेस्ट किया गया और ऑपरेटर्स को सही ट्रेनिंग भी नहीं थी।
तो नतीजा?
नतीजा हुआ एक भयानक विस्फोट, आग, और पूरे यूरोप में रेडियोधर्मी धुआं फैल गया। ये इंजीनियरिंग की नाकामी तो थी ही, साथ ही सुरक्षा संस्कृति की भी पूरी तरह से विफलता थी।
तो सबक ये है कि डिजाइन और सुरक्षा इंतजाम कितने ज्यादा जरूरी हैं, और शायद उनको चलाने वाले लोग भी।
बिल्कुल, सारे रिएक्टर एक जैसे नहीं होते। मजबूत इंजीनियरिंग के साथ साथ एक सख्त सुरक्षा संस्कृति, नियमों का पालन और सही ट्रेनिंग, ये सब मिलकर ही इसे सुरक्षित बनाते हैं।
किताब भविष्य की भी बात करती है, परमाणु संलयन यानी फ्यूजन। क्या ये हमारी ऊर्जा समस्याओं का जादुई हल है?
फ्यूजन विखंडन फिशन का उल्टा है। इसमें हाइड्रोजन जैसे हल्के नाभिकों को अत्यधिक तापमान और दबाव पर जोड़कर हीलियम जैसा भारी नाभिक बनाया जाता है। यही प्रक्रिया सूरज और तारों में ऊर्जा पैदा करती है।
इसके फायदे क्या हैं?
फायदे जबरदस्त हैं। ईंधन लगभग असीमित है क्योंकि हाइड्रोजन पानी में होता है। कोई ग्रीनहाउस गैस नहीं निकलती, कोई लंबा चलने वाला रेडियोधर्मी कचरा नहीं बनता और इसमें बेकाबू चेन रिएक्शन होने का खतरा भी नहीं होता।
अरे वाह, ये तो कमाल है। तो फिर हमें बिगडक फ्यूजन पावर प्लांट क्यों नहीं बना पाए?
क्योंकि ये करना बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए सूरज के केंद्र से भी ज्यादा करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्लाज्मा बनाना पड़ता है और उसे किसी तरह काबू में रखना होता है। वैज्ञानिक सालों से इस पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे फ्रांस में ITR।
हाँ, मैंने सुना है ITR के बारे में।
लेकिन ये तकनीक अभी व्यावसायिक रूप से बिजली बनाने से बहुत दूर है। ये हमारी आज की ऊर्जा या जलवायु समस्याओं का हल नहीं है, ये भविष्य की उम्मीद है शायद।
तो आखिर में आज की जो परमाणु ऊर्जा है फिशन वाली, उसके भविष्य पर किताब का क्या नजरिया है? क्या ये चलेगी, बंद हो जाएगी?
इरविन एक बहुत ही संतुलित तस्वीर पेश करते हैं। फायदे साफ हैं, ये एक साबित हो चुकी तकनीक है, भरोसेमंद है, बहुत कम जमीन पर बहुत ज्यादा बिजली बनाती है और चलते समय कार्बन उत्सर्जन नहीं करती, जो जलवायु परिवर्तन के इस दौर में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
लेकिन चुनौतियां भी तो हैं।
हाँ, 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, अर्थशास्त्र। न्यूक्लियर प्लांट बनाना बहुत महंगा है और इसमें सालों लग जाते हैं। दूसरी, जनता की राय और सुरक्षा का डर, बड़ी दुर्घटनाओं का डर और रेडिएशन का जो अदृश्य खतरा है वो लोगों के मन में बैठा हुआ है। इससे नए प्लांट के लिए राजनीतिक और सामाजिक मंजूरी मिलना मुश्किल होता है।
और तीसरी?
और तीसरी वही कचरा। उस खतरनाक लंबे समय तक चलने वाले कचरे का क्या करें? इसका कोई पक्का स्थायी समाधान अब तक दुनिया में कहीं भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है।
तो आखिरी फैसला क्या है? किताब क्या कहती है, हाँ या ना?
इरविन कोई सीधा हाँ या ना नहीं कहते। वो यही कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा एक ऐसी तकनीक है जिसमें गहरे समझौते यानी ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं। इसे अपनाना है या नहीं, और अगर अपनाना है तो कैसे, ये सिर्फ वैज्ञानिक फैसला नहीं हो सकता, ये एक सामाजिक और राजनीतिक फैसला है।
मतलब हमें तोलना होगा।
हाँ, हमें इसके फायदों, खासकर जलवायु के लिए, को इसके जो अनोखे और लंबे समय तक चलने वाले जोखिम हैं उनके सामने रखकर तोलना होगा। और ये फैसला तभी सही हो सकता है जब जनता, हम सब, जानकारी से लैस हों, सिर्फ डर या सुनी सुनाई बातों पर नहीं।
तो इस पूरी चर्चा से, इस किताब से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, आप क्या कहेंगे?
मेरे हिसाब से पहली बात तो ये है, परमाणु की दोहरी प्रकृति, इसमें अपार शक्ति है लेकिन साथ ही अपार जिम्मेदारी भी। वही विज्ञान बिजली भी बना सकता है और बम भी।
हाँ, ये तो है। और दूसरा?
दूसरा, जोखिम को सही नजरिए से देखना। परमाणु ऊर्जा के जोखिम हैं, उन्हें शून्य नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें दूसरे विकल्पों के जोखिमों से तोलना जरूरी है, जैसे कोयले से होने वाला वायु प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन का खतरा। सिर्फ डरना काफी नहीं, समझना होगा कि जोखिम कितना बड़ा है और किसके मुकाबले में।
और तीसरा?
तीसरा, पूरी तस्वीर देखना। सिर्फ रिएक्टर पर ध्यान देना काफी नहीं है, पूरे ईंधन चक्र को, खुदाई से लेकर कचरे तक को ध्यान में रखना होगा। असली चुनौती अक्सर रिएक्टर के बाहर होती है, जैसे कचरा प्रबंधन।
चौथा शायद वो इंजीनियरिंग और सुरक्षा वाली बात।
बिल्कुल, अच्छी इंजीनियरिंग के साथ साथ एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति, नियमों का पालन, लगातार निगरानी, ये सब बेहद जरूरी हैं। TMI और चेर्नोबिल यही सिखाते हैं कि इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है।
और पांचवा?
और पांचवा, कचरे की पहेली। ये शायद तकनीक से ज्यादा राजनीति और समाज की समस्या बन गई है। तकनीकी समाधान शायद मौजूद हैं या बनाए जा सकते हैं, पर उन्हें लागू करने के लिए जो आम सहमति और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, उसकी कमी है।
और शायद सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें जानकारी भरी बहस की जरूरत है, ताकि हम सब मिलकर सोच समझ कर फैसला ले सकें।
हाँ बिल्कुल, किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे ये सोचना कि 1 किलो यूरेनियम में 1000 टन कोयले जितनी ऊर्जा होती है। ये पैमाना ही मतलब दिमाग घुमा देता है।
बिल्कुल, और ये भी कि हम प्राकृतिक स्रोतों से और मेडिकल टेस्ट वगैरह से रोजाना जितना रेडिएशन लेते हैं, वो अक्सर परमाणु प्लांट के पास रहने वालों को मिलने वाले अतिरिक्त रेडिएशन से कहीं ज्यादा होता है। ये जोखिम को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है।
और ये बात कि कचरे का निपटान तकनीकी से ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है, ये याद दिलाता है कि विज्ञान और तकनीक समाज से कटकर काम नहीं कर सकते, समाज की स्वीकृति जरूरी है।
तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो इस जानकारी का क्या करें? इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है?
देखिए, सबसे पहले तो अब जब भी ऊर्जा नीति पर या जलवायु परिवर्तन पर कोई खबर सुने या कोई बहस देखें, तो उसे बेहतर समझ सकते हैं। कोई कहता है नया प्लांट लगाओ, कोई कहता है बंद करो, अब शायद आप बेहतर सवाल पूछ पाएंगे कि भाई क्यों, इसके पीछे का तर्क क्या है।
हाँ, और अगर कभी किसी परमाणु प्लांट से जुड़ी कोई घटना की खबर आती है तो शायद अब उसे सही संदर्भ में देख पाएंगे। क्या ये छोटी मोटी गड़बड़ी है या वाकई खतरनाक स्थिति? कंटेनमेंट बिल्डिंग जैसे सुरक्षा उपायों के बारे में जानने से शायद घबराहट कुछ कम हो।
और ये समझ विकसित होती है कि ऊर्जा के मामले में कोई आसान जादुई जवाब नहीं है। हर विकल्प के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान। कोयला सस्ता है पर प्रदूषण फैलाता है और CO2 छोड़ता है। सोलार साफ है पर रात में और बादल होने पर काम नहीं करता। बैटरी महंगी है, परमाणु साफ है पर कचरे और सुरक्षा का सवाल है।
तो ये ज्ञान हमें सरल हाँ या ना से आगे बढ़कर इन जटिल समझौतों, इन ट्रेड ऑफ्स को समझने में मदद करता है।
बिल्कुल।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत में सबसे चौंकाने वाली बात शायद वही ऊर्जा घनत्व का पैमाना है। 1 किलो बनाम हजारों टन, और साथ ही TMI और चेर्नोबिल का फर्क। कैसे डिजाइन और सेफ्टी कल्चर इतने अलग नतीजे दे सकते हैं, ये दिखाता है कि तकनीक के साथ इंसानी पहलू कितना अहम है।
मेरे लिए सबसे अहम बात है जानकारी की ताकत। इरविन की किताब यही तो कहती है कि इतने बड़े फैसले डर या अफवाहों पर नहीं बल्कि समझ और सबूतों पर आधारित होने चाहिए। और हाँ, कचरे वाली बात भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। ये दिखाती है कि सिर्फ तकनीकी हल काफी नहीं होते, हमें सामाजिक और राजनीतिक हल भी खोजने पड़ते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।